أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جنوری 1980 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 45 سے ہو رہا ہے، 33/45. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں یہ کہا گیا تھا کہ وَاللَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، عام ترجمے میں جسے درود کہتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگے جا کے اسی سورت کی آیت 57 میں آتے ہیں، تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. خصوصیت بیان ہی وہی الفاظ خدا اور اس کے ملائکہ کی طرف سے مومنین کے متعلق آتے ہیں. یہ بڑی اہم حقیقت ہے. نبوت تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص تھی اور وہیں ختم ہو گئی، لیکن جسے رسالت کہتے ہیں یعنی اس پیغام کا آگے پہنچانا، اس پیغام کے مطابق عملی نظام قائم کرنا، یہ فریضہ حضور کے بعد امت سے سپرد کیا گیا، جماعت مومنین سے سپرد کیا گیا. تو نبوت کو چھوڑ کر یہ جو باقی فرائض زندگی تھے، جتنی خصوصیات کبری تھیں، اب ان کی حامل یہ امت تھی، حضور کے متبعین ہوئے. یہی ہے ختم نبوت، کہ یہ جتنے فرائض اور ذمہ داریاں تھیں یہ اب یہ امت سر انجام دے گی، مومنین سر انجام دیں گے. قرآن کریم نے اسی لیے اس امت کو کہا ہے کہ اب تم وارث کتاب ہو. تو یہ کتاب ہے جو مکمل ہے، غیر متبدل ہے، محفوظ ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے. تو اس لیے خدا کی طرف سے کسی اور وحی آنے کی ضرورت نہیں رہی. یوں ختم نبوت تو ہوئی، لیکن وحی جو ہے وہ تو اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کے نظم و نسق کے لیے ہدایات دینے کے لیے آئی ہے. تو وہ جب تک دنیا میں انسان ہے، اب یہ کتاب ان کے لیے ضابطۂ ہدایت ہے. اور کتاب تو الفاظ اور حروف اور نفوس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ ضابطۂ حیات ایک زندہ نظام کی شکل میں انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہوتا ہے، اور وہی انسان ہے کہ جنہیں مومنین کہا گیا ہے، امت کہا گیا ہے حضور کی. اور اس اعتبار سے یہ جتنے فرائض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو قائم کرنے کے سلسلے میں تھے، اب وہ فرائض اس امت کے ذمے آتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ جہاں وہاں یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یصلی علیہ، وہی الفاظ یہاں آئے تھے امت کے متعلق تھے، وَاللَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ. بتایا یہاں یہ تھا کہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے خدا کی تائید اور نصرت اور اس کے ملائکہ کی تائید، کہ لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. بہت بڑی چیز ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف آ جانا. اب یہی امت ہے، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نظام آگے چلنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، نظام کو قائم کر کے اس کی بنیاد رکھ دی حضور نے، دکھا دیا کہ یہ اس کی عملی شکل ہوگی، اور اس کے بعد یہ فریضہ امت اب آگے چلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگلی آیت میں ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ایک ہی آیت کے اندر بلکہ وہ دو ساتھ ملی ہوئی آیتیں ہیں. کس قدر عالم صاحب خصوصیات کبری کا ذکر یہاں آ گیا ہے. ایک ایک لفظ کے اندر ایک دنیا جھلک رہی ہے. پہلی چیز ہے کہ انا ارسلنا کا شاہد، شاہد کے معنی ہوتا ہے نگران. यानी अब ये निगरानी जो थी, आप ये देखिए कि ये किस चीज की निगरानी थी, किन लोगों की निगरानी थी। पहले तो उस नूर को लीजिए, वो जिसे जुलमात से कहा गया कि नूर की तरफ ले आएंगे, ये मोमिनीन की जमात तो जुलमात से नूर की तरफ निकल आई। सवाल ये है कि बस ये मामला यहाँ खत्म हो गया, ये रोशनी में आ गए, तो यहीं तक ये बात है, इसके बाद कोई और सुविधा आयद नहीं होता। कहा ये बात नहीं है, और ये है जहाँ से ये हम फरीजा शुरू होता है कि ये तो रोशनी में खुद आ गए। 6/123 आवा मन काना मैतन, बड़ी अजीम आयत है, फाहया ना हो व जालना लहू नूर यमसी लही सिन नास। सोचो तकाबुल है, यहाँ आगे बताया गया कि क्या ये ऐसे लोग इन लोगों के बराबर हो जाएंगे जो आगे बयान किया गया है। लेकिन पहले ये देखिए कि ये क्या कहा इन लोगों के मुतल्लिक कि वो के जो मुर्दा था, वो कौम जो मुर्दा थी, ये कुरान के कुरान ने जो किया है इंसानियत के लिए, देखिए एक लफ्ज में कैसे कुरान के लिए बयान कर दिया कि ये इंसानियत, ये कौम एक मुर्दा कौम थी, खुदा ने इसे जिंदा किया। अब यहाँ आप देखिए कि कौमों की हयात और ममात के लिए यही लफ्ज आए। ये तो है नहीं है कि ये सचमुच मुर्दा थे, कब्रिस्तान में कब्रों के अंदर रहते हुए थे और वहां से जाके कुंभ ने कहा और इनको जिंदा कर दिया। एक कौम है, हमारे यहाँ भी ये आम मुहावरा है, ये मुर्दा कौम है, उनको हयात नौ अता होना, नशा के सानिया अता हो जाना। कहा कि क्या वो जो पहले मुर्दा था, अब इस्लाम से पहले की हालत को कुरान ने मौत से ताबीर किया है, जिंदगी के कोई आसार नहीं, सांस तो लेते थे, जिंदा थे, चलते फिरते थे, काम काज दुनिया के सारे करते थे, लेकिन इंसानियत मुर्दा हो चुकी हुई, फिर उन्हें जिंदा किया। कुरान का ये एजाज बताया, कुरान का ये मकसद बताया कि ये करता क्या है, मुर्दा कौमों को हयात ताजा अता कर देता। तो पहली चीज तो परखने की ये है कि अगर कोई कौम रोना रोती रहती है कि साहब हम तो मुर्दा के मुर्दा हैं, ये मुर्दा कौम है, इनको दोबारा जिंदगी अदा करनी है, तो मुर्दा कौम में तो कुरान नहीं आता। कुरान ने तो अपना फरीजा ये बताया है कि जो कौम इसे अपना लेगी वो मुर्दा नहीं रह सकती, वो जिंदा होगी, उसका शुमार जिंदा कौमों में होगा, उसे जिंदा किया। चलिए मैंने कहा है ना कि ये भी उन अफराद तक या उस कौम तक बात होगी कि वो जिंदा हो गई, जैसे वहां था कि वो जुलमात से निकल के नूर में रोशनी में आ गई। तो क्या ये फरीजा खत्म हो गया फिर से आ गई, इन्हीं तक बात नहीं है। वह जालना लहू नूर, वही नूर वो जिसमें वो खुद आए थे कि उन्हें एक रोशनी दी, काहे के लिए दी कि वो खुद रोशनी में रहे, और बस नहीं, यमशी दही से नाश, ताकि इस मिसल को लेकर, इस तंदील को लेकर, इस क्षमा को लेकर वो फिर दुनिया में फिरे लोगों के अंदर और उन्हें भी इसी तरह से रास्ता दिखाते चले जाए। ये बड़ी अहम चीज आई, ये नहीं कि खुद ही सही रास्ते पे हों, खुद ही रोशनी में आए, बल्कि ये कि खुद रोशनी में आए कंदील कुरानी वजह, और इस समा को कंदील को लेके यमसी लही किन्नास, फिर वो आलम इंसानियत में, लोगों में, दूसरी कौमों में, दूसरे मुल्कों में इस क्षमा को लेकर फिरें। समझ लिया कि इस क्षमा को लेकर फिरने के माने क्या है, ये फरीजा आ गया इस उम्मत का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत में वो जो अय्याम जाहिलियत के मुर्दा कौम थी उसको जिंदा किया, तो जमात मोमिनीन बनाई, जमात मोमिनीन तारीकी से रोशनी में आई। अब हुजूर के बाद इस जमात मोमिनीन का, इस उम्मत का ये फरीजा है ये नहीं है कि खुद ही रोशनी में रहे तो बस ठीक है साहब, हम तो रोशनी में हैं, हमारा और फरीदा क्या है। कहा फरीदा ये है तुम्हारा कि दुनिया में जहाँ जहाँ तारीखियाँ हैं वहाँ रोशनी फैलाओ जाता। ये कुरान तुम्हें दिया गया है इसलिए बहुत बड़ा फरीदा ऐड होता है इस काम के ऊपर। यमसी दही से नास, कहा ये कभी उसके बराबर हो सकते हैं। समान मसलो हूँ सिर्फ जुलमात लैसा बेखारे जिन मिनहा, क्या ये लोग उनके बराबर हो सकते हैं, उन जैसे हो सकते हैं कि जो तारीकियों के अंदर है और तारीकियां ऐसी हैं कि उनसे वो निकल नहीं पाते। जहन्नम के मुतल्लिक भी ये बताया माहूम बेखारजी ने मिनल्लाह, लाश चाहेंगे कि निकले। जहन्नम इस तरह से मुहित होगा, मुहितम बिल काफरीन कुरान ने कहा, चारों तरफ से इस तरह से उन्हें घेरे हुए होगा कि वो वहां से निकल नहीं पाए। यहां भी ये कहा कि वो तारीकियां कि जिन तारीकियों से वो निकल नहीं पाएंगे, माने इसके ये हैं कि ये तारीकियां वो हैं कि जहां से आज खुद इंसान नहीं निकल सकता, उसको जही की रोशनी की जरूरत होती है। इसीलिए तो ये जमात मोमिनीन से कहा कि तुम इस समय कुरानी को लेके इंसानों में फिरो ताकि जिस तरह से तुम तारीकियों से निकल के रोशनी में आ गए हो, इसी तरह से तुम दूसरी अकवाम आलम को तारीकियों से निकाल के रोशनी में ले आओ। तो यहाँ इतनी ही बात नहीं है कि यह ठीक है साहब मैं तो अच्छा हो गया, मैं तो ठीक हो गया, फलां शख्स तो नेक है, नेक काम करता है। हम देखते ही हैं कि हम इन चीजों को सर तक महदूद रखते हैं कि वो अगर अच्छा हो गया तो मुझे दूसरों से क्या वास्ता है। सवाल ही नहीं है यहाँ दूसरों से क्या वास्ता है, यहाँ तो ये जिम्मेदारी लगती है, जिम्मेदारी आयद होती है उसके ऊपर कि जो रोशनी में आता है उसकी जिम्मेदारी है कि जो तारीकियों में है उन्हें जाकर रोशनी में लाए। ये फरीजा था इस उम्मत का। कदाले का जुयन अल काफिरीन मा कानू या मलून, अजीब बात है। कहा यूं तो तुम्हारे जहन में नहीं आएगा कि कभी तारीकियों में रहना भी किसी को पसंद आता है। कहता है कैफियत ये हो जाती है वो तारीकियां कि जिनसे इंसान निकल नहीं पाता, उनमें रहते रहते कैफियत फिर ये हो जाती है कि वो अंधेरों की तारीकियों की जो जिंदगी है वही खुश आने लगती है उनको। चमगादड़ रोता है जब सूरज चढ़ता है तो उसे रात ही नहीं आ सकती रोशनी। मुद्दतुल उम्र की तारीकियों में जिंदगी गुजारने के बाद कैफियत फिर ये हो जाती है कि तारीकी ही खुश आने लग जाती है, रोशनी उनकी आंखों में निगाहों में चकाचौंध पैदा कर देती है, आंखें बंद कर लेती हैं वो उसको, दूर भगाते हैं उसे, दुआई दे देते हैं कि बड़े हटो, अरे जाओ सोने दो। कुरान की रोशनी दिखाने वालों के खिलाफ उनका रद्द अमल ये हो जाती है। ना ले काफिरीन मा कानू, क्या बात, तारीकी खुश आने लग जाती है उनको, खूब मस्त रहते हैं उसमें, सोते हैं ना उसमें, रोशनी आ जाती है तो फिर नींद में खलल वाकिया हो जाता है। कहा कि ये जो चीज है कि मुसलसल रोशनी में रहते हैं और रोशनी में रहना फिर पसंद करते हैं, ये क्या आज खुद हो जाता है? कहा आज खुद नहीं होता, बहुत बड़ी साजिशें हैं। तारीकियों में चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, ये जिस किस्म के जराइम पेशा है उनके लिए भी तारीकी अंधेरा बड़ा खुशाइंद होता है, वो भी नहीं चाहते कि वहां कोई रोशनी पहुंच जाए। कहा ये जो मुस्तकिल तारीकियों में रखा जाता है कौमों को, कैसे ये कौमें इस तरह से रहती हैं, कैसा ये अंधेरा मुस्तकिल किया जाता है। कजारे का जालना की कुल्ले करिया तेन अकाबेरा मुजरमी हा, कौम के अंदर तो छोटे छोटे जराइम करने वाले होते हैं, इनमें बड़े बड़े जराइम करने वाले जो है ना अकाबेरा मुजरमी, वो इस किस्म के प्लान बनाते रहते हैं कि रोशनी ना आने का। क्या बात है, इन प्लान रोशनी ना आने का, रोशनी आने से सबसे पहले तो ये खुद नंगे होते हैं और उसके बाद ये जो फिर नीचे इनके पीछे चलने वाले जराइम करते हैं उनके पास भी होती है, लेकिन इनको इनका नहीं ख्याल होता, अपना ख्याल होता है कि रोशनी आई तो हम बरहना हो जाए। रोशनी का काम ये है कि वो हर शय को अपनी असली हकीकत में दिखा देती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कमरे के अंदर हो सकता है कि आप सांप को रस्सी समझते रहे, रस्सी को सांप भी समझते रहे, लेकिन जो ही एक जरा सी माचिस भी आपने जलाई, एक किरण भी रोशनी की कोई, तो सांप सांप की शक्ल में, रस्सी रस्सी की शक्ल में आ जाएगी। ये जो अकाबिर मुजरमी है, जरा सी रोशनी हो जाएगी तो नजर आ जाएगा ये कि मुजरम ही नहीं है, मुजरमों के सरगना है, अकाबिर है। इसलिए उनका ये प्लान होता है, ले यमकुरू फीहा, वो इस किस्म के प्लान बनाते रहते हैं कि इनको तारीकियों में रखा जाए, इन्हें अगर रोशनी में असर आ जाएगी तो ये हमें भी देख लेंगे कि ये क्या है। यमकुरू की प्लान उनके ये होते हैं कि कौम को तारीकी में रखा जाए ताकि ये हमें हमारी असली शक्ल में देखने ना पाए। क्या बात है कुरान की, वमा यमकुरून इल्ला बिअन्फुसिहिम वमा यशुरून। प्लान बना के खुश हो जाते हैं कि हम बड़े कामयाब हुए, हमारी साजिशें बड़ी कामयाब हो गई, कौम तारीकियों में रही, हमें कोई पहचान ही नहीं सका कि हम क्या हैं। कहा इन्हें पता नहीं है कि ये प्लान, ये साजिशें खुद इनकी अपनी जात के खिलाफ हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि इस वक्त ये इसका शऊर नहीं रखते कि तबाही तो सबसे पहले इन्हें आएगी, तारीकी में जो तबाही आएगी जिसकी वजह से इन्होंने समझा कि कोई हमें ना पहचानने पाए, कौम को भी तारीकियों के अंदर ही रखा, तो कहा कि जब कोई तारीकी इस तरह से तबाही आएगी कि जिसे ना कौम दे सकेगी ना ये दे सकेंगे, तो ये जब वो तबाह होगी तो ये कहां बच जाएंगे। समाज हम करूँ ना इंदा भी अनुपुष, ये सारे प्लान, ये सारी साजिशें कौम को तारीकी में रखने की जो है, ये पलट के इन्हीं के खिलाफ जाके पड़ेंगे। ये भी नहीं बच सकते, कौम अगर डूबेगी तो ये नहीं बच सकते। माँ यह करूँ, काश ये अकलो शूर से काम लेते तो बात बड़ी आसान थी, चीज समझ में आ जाती कि अंधेरे के अंदर हाँ वो अपने फॉलोअर्स को या आवाम को या कौम को रखे या उसके साथ खुद रहें, तारीकी के जो नुकसान होंगे उनसे ये भी नहीं बच सकेंगे, ये तो सबसे पहले उसके सामने आएंगे। कह मैं ये रहा था कि जमात मोमिनीन का फरीजा ये बताया कि ये नहीं कि ये खुद तारीकियों से निकल के रोशनी में आ गए तो इन्होंने कहा कि बस ठीक है। कहा उसके बाद इनका फरीजा ये है कि ये इसी समय कुरानी को लेकर दुनिया में चले फिरें, जहां जहां ये तारीकियां छाई हुई हैं वहां ये रोशनी फैलाएं, और तारीकियों के मुतल्लिक कहा कि ये फैलाई कैसे जाती हैं और इनको मुस्तकिल कैसे किया जाता है, इन पर्दों को दबीज से दबीज कैसे बनाया जाता है। अकाबर मुजरमीन है, सरगने जो हैं ये बड़े बड़े अकाबरीन, उनके प्लान ये होते हैं कि रोशनी आने न पाए। इनका फरीजा ये बताया गया है कि खुद रोशनी में आ गए हो तो मुतमईन हो के यहाँ न बैठ जाओ कि कोई बात नहीं, हमारा खिता तो रोशन हो गया, हमें हमारा कमरा तो रोशन हो गया, हमें तो रोशनी मिल गई। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, रोशनी मिली है तो इस क्षमा को लेके निकलो, और जहाँ जहाँ अकाबर मुजरमीन ने ये प्लान बना रखे हैं, ये साजिशें कर रखी हैं कि इंसान रोशनी में ना आने पाए, वहां जाओ और ये रोशनी फैलाओ, उन अकाबर मुजरमीन की इन साजिशों को नाकाम बनाओ। गौर फरमाया आपने कि खत्मे नबूवत के बाद यही फरीजा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ये किस तरह मुंतकिल होके हजूर के मुत्तबईन की तरफ या उम्मत मुस्लिमा की तरफ, जमात मोमिनीन की तरफ मुंतकिल होके आ जाता है, ये इनका फरीजा था इस कौम का। अब इसके बाद आगे मुझे कहने की जरूरत तो है नहीं। कुरान ने कहा यह था कि क्या वो जो مردہ ہے اور اسے زندگی عطا ہوئی ہو اور پھر روشنی ملی ہو, کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو مردے کا مردہ ہی رہے اور پھر روشنی بھی نصیب نہ ہو, اور جو زندہ ہونے کے بعد مردہ ہو جائے, جو اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے کہ کہیں میری نیند میں خلل نہ آنے پائے, اسے کون روشنی میں لے جائے؟ یہ تو دنیا کی تاریکیوں کو مٹانے کے لیے معمول ہوئے تھے. کیفیت ان کی یہ ہے کہ یہ خود اپنے کمرے میں دیا سلائی بھی جلانے نہیں دیتے. کیوں؟ میاں نیند اچاٹ ہوتی ہے, کیا کر رہے ہو تم؟ ہوتا ہے نا, روشنی میں نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. ہمیں رہنے دو ان تاریکیوں میں, بڑی راس آتی ہے چمگادڑوں کو تاریکی. وہ کبھی, میں نے جیسا کہا ہے, وہ سورج نکلتا ہے تو وہ تو غالباً بدوائیں لیتے ہوں گے. یہ تاریکیاں کیا ہیں؟ ما یشعرون نے بات صاف کر دی. عقل و بصیرت کو, شعور کو, فکر اور تدبر کو اس کے سوئچ آف کیے جاتے ہیں. سوئچ آف کیجیے تاریکی. یہ ما یشعرون کی بات جو ہے, عجیب آنے من قرآن کا ایک ایک لفظ ہے, وہ تو یوں معنی واضح کرتا چلا جاتا ہے. تاریکیاں یہ ہیں کہ ان کے شعور اور علم اور فکر کی شمیں بجھا دو, یہ سوچنے کے قابل نہ رہیں. اور جب یہ ہوگا تو ہر قسم کی اوہام پرستیاں, توہم پرستیاں عام کرتے چلے گا. پھر اس تاریکی کے اندر جس چیز کو تم اسے کہو کہ یہ سونا ہے, وہ سونا ہوں گے, خواہ وہ پتھر کیوں نہ ہو یا لوہے کا ٹکڑا کیوں نہ ہو. جو تم کہتے چلے جاؤ گے یہ مانتے چلے جائیں گے. اکابر مجرمین کا تو کام یہ ہوتا ہے نا, تاریکی میں جس چیز کو یہ اچھا کہتے ہیں وہ اچھا کہیں گے. تاریکی میں تو انہیں نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کہ خالص سونا ہے, ٹھیک ہے, روشنی ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ نہیں لوہے کا ٹکڑا ہے. کہا یہ ہوتی ہے سازش اکابر مجرمین, اور اس کا علاج تھا روشنی کی ایک کرن. ان کی سازش یہ ہے کہ یہ روشنی نہ لانے پائیں, اور اس سازش سے کیا یہ کہ یہ جو قندیل کے یا شمع بردار تھے, اس قندیل کو لے کے چلنے والے تھے, انہیں ہی سلا دیا انہوں نے. اور انتہائی کوششیں پھر یہ ہوتی ہیں کہ یہ جاگنے نہ پائیں. مست رکھو ذکر و فکر شروع جاہی میں, سختہ تار کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ اپنی جو چڑھائی جاتی ہیں عقل و فکر کے چراغوں کو بل کر دیتی ہیں. ابھی اس کے بعد کسی وقت خمار بھی ان کو آتا ہے تو دوبارہ افیون ہی مانگتے ہیں, سلانے والی چیز دوبارہ مانگتے ہیں. یہ نہیں ملتی تو تڑپتے ہیں, پھڑکتے ہیں, مضطرب و بے قرار ہوتے ہیں, مارے مارے پھرتے ہیں, جان دے دیتے ہیں. مانگتے دوبارہ پھر وہی سونے والی گولیاں. یہ ہوتا ہے یہ جسے قرآن نے سازش کہی ہے قادر مجرمین کی, جاگنے نہ پائیں گے. تو امت کا فریضہ یہ بتایا بات یہاں کی, خود روشنی میں آ گئے ہو تو اب اس شمع کو لے کے چلو انسانوں کی دنیا میں. دیکھا ہے جو خود تو نے اوروں کو بھی دکھلا. یہ فریضہ تھا امت کا. اس کی روشنی میں اب اگلی آیت جو سمجھ میں آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ انا ارسلنا کا شاہدا, ہم نے تمہیں نگران مقرر کیا ہے. آئیے اب دیکھیں نگرانی کے معنی کیا ہے, فریضہ کیا ہے, کہاں جاتی ہے یہ, کس کے متعلق کہا گیا ہے, اور پھر امت کا فریضہ کیا ہے. 2:143 جماعت مومنین سے مخاطب قرآن خدا, ادارے کا جالنا کن امتن وسطن, ہم نے اس قرآن کے ذریعے تمہیں ایک قوم بنایا ہے. کیا لفظ ہے یہ وسطن؟ یہ جو دائرے کا نقطہ مرکز سینٹر ہوتا ہے, وہ اس کے سرکم فرنس سے, جو جس کو محیط کہتے ہیں, دائرہ جس کو کہتے ہیں, اس سے ایکوی ڈسٹنٹ ہوتا ہے. یعنی ہر مقام سے اتنے ہی فاصلے کے اوپر یہ نقطہ ہوتا ہے. पूरा दायरा जो है, दायरे के किसी मुकाम पे भी कोई हो, नुक्ता उससे बराबर के फासले पे होता है। ये है मसावात की हकीकत। कहा वो कौम बनाया हमने तुम्हें कि दुनिया की हर कौम हर इंसान से यकसा फासले के ऊपर हो, तुम अदल और इंसाफ और मसावात की अदीजा ने मांग, इसके बेहतर कुछ भी नहीं हो। लाइए इसका सब्स्टिट्यूट आप तस्वीर के, इस बात पूरा दायरा कितना ही बढ़ा दीजिए दायरे को, आप मुहित कुल कर दीजिए दायरे को, आप पूरी कायनात के ऊपर मुहित कर दीजिए दायरे को, वो जो अंदर का नुक्ता सेंटर है वो इक्वी डिस्टेंट रहेगा। और वो कौन कि जो ना किसी की रू रियायत करे, ना खाम खा किसी की मुखालफत करे, ना किसी से दूर हटे, ना यूं ही करीब हो, पूरी इंसानियत से यकसा फासले के ऊपर ये कौम है। दुनिया में इंसाफ करने वाली कौम की इससे बेहतर तस्वीर की और हो सकती है? उम्मतन वसतन काहे के लिए ये सब कुछ किया? ले तो कून शोहदा से फरीदा जिंदगी अजीजा ने मन, ताकि तुम अकवाम आलम के आमाल की निगरानी कर सको। ये कौन रास्ते से भटका, किसने नाइंसाफी की, किसने मजलूम का गला दबाया, कौन मेहनत कश की मेहनत को इस्तेमाल करके ले गया, देखते रहो खड़े हुए शोहदा अलन्नास। तो बाबा मैं क्या अर्ज करूँ और दिन से ये अर्ज करूँ कि जिनके मुतल्लिक कहा जाता है अजीजा ने मन, कुरान और खुदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने वालों, आपके मुतल्लिक ये कहा गया था कि ये है इस मकसद के लिए इस उम्मत को बनाया था। खुद तारीकी से नूरानियत रोशनी के अंदर आए, रोशनी लेके सारी दुनिया में फिरे, और उसके बाद शोहदा अलन्नास, ये जो कहा था अंतुमुल आलाउन, तुम सारी दुनिया के ऊपर गालिब आके रहोगे। तो ये गलबा जो था मलूकियत का गलबा नहीं है, ये कुव्वत और इस्तेदाद का गलबा नहीं, वो मकाम का आला होना है। ये जो बुलंद तरीन मकाम दिया है इस कौम को, अब ये भी तस्वीर देख लीजिए, वो जो निगरानी करने वाला होता है उसे मकाम पे होता है, मीनारे पे खड़ा होता है, किले की फसील पे खड़ा होता है, जो नीचे खड़ा हो वो तो निगरानी कर ही नहीं सकता। निगरानी करने वाले के लिए बुलंद मकाम के ऊपर होना नहायत जरूरी है। तो ये अंतमुल आलाउन जो कहा था इनको, तो ये नहीं था कि तुम सब पे गालिब आ जाओगे और उनके ऊपर वो सब तुम्हारे दुबैल हो जाएंगे, उनके ऊपर चढ़ के बैठ जाओगे, बल्कि ये कि बुलंद मकाम के ऊपर तुम्हें बैठना होगा ताकि तुम निगरानी कर सको अकवाम आलम के आमाल की। ये था फरीजा मोमिन का। अब उसके बाद ये है कि तुम्हारी अपनी कैफियत क्या होगी, यानी तुम्हारे ऊपर कोई भी निगरान नहीं फिर रहेगा? कहा नहीं, वजकून और रसूल और हलैकम से ही, ये जो मरकज मिल्लत है, ये रसूल जो है, ये सरबराह जो है, ये तुम्हारे आमाल की निगरानी करेगा। ये निजाम हो गया इस्लामी अजीजा ने मान, तय पानी झिड़क देता है ये लोग बरसों, इस्लामी निजाम क्या है, ये है इस्लामी निजाम। अब ये जो है शाहिद होना, सीधी सी बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर तो ये बात हो गई कि हुजूर खुद बजस्वी अंसरी मौजूद थे, लेकिन सवाल तो इस फिजिकल लाइफ का नहीं था। जिस तरह से इस उम्मत का वो जो आलाउन मकाम है जहाँ ये ऊंचे खड़े हैं, इसी तरह से ये मरकजी मकाम है जो रसूल का था, सरबराह थे हुजूर, ये जिसे मरकज मिल्लत मैंने इब्तदा में ये बात कही, मैंने मरकज इसीलिए कहा था अजीजा ने मन, ये जो वसत की तस्वीर थी इससे मैंने कहा, मेरे खिलाफ एक दुगदगी लगी हुई है, देखिए साहब ये तो कह रहा है मरकज मिल्लत इनको बना रहा है, और मुझे कहा कि भी ये अल्फाज इनके वो गुलाम अहमद जैसा मरहूम हो गए हैं काजों को, उसको ये साहब मरकज मिल्लत कह रहा है, उसको ये रसूल बना रहा है। यानी ये तारीकी में बसने वाले जिनको रोशनी रात नहीं आती, यम तो रूना ये है ना साबिश कि जो रोशनी की तरफ तुम्हें बुलाए, जो जरा माचे जलाए फूक के बुझा दो और उसके मुतालिक थप्पड़ दो उसके मुंह के ऊपर। ये एक निजाम ऐसा अजीबो गरीब कुरान ने दिया है, एक उम्मत वो बनाता है कि जो अकवाम आलम के अमाल की निगरान है और उनको इस तरह से छोड़ नहीं देता उस उम्मत को कि देर आ रहा हो तो तुम्हें देखने वाला कोई ना हो। इस उम्मत का एक मरकज होना चाहिए। जैसे ये उम्मत अगवाम आलम के दायरा मुहित के कुल के लिए मरकज है, इसी तरह से इनके ऊपर भी एक मरकज होना चाहिए। और ये है वो मरकज, हुजूर की जिंदगी में रसूल का नाम लिया है, हुजूर की वफात के बाद इस निजाम का जो मरकज होगा, मरकजी कंट्रोल जिसके हाथ में होगा, वो बाकी उम्मत के आमाल की निगरानी करेगा। ये एक निजाम पूरा दिया गया यकून और रसूल वाला है। अब इसे यह नजर आ गया कि ना तो ये इनका खुद रोशनी में आ जाना जो था, यही आखिरी मरहला है इनकी जिंदगी का, रोशनी में आ जाना नहीं, फिर इस रोशनी को लेकर दुनिया में चलना फिरना, कि जो जो भी तारीखियों में है उन तारीखियों को निकाला जाए। बात अलाफाज की तारीखियाँ, तबाहम परस्ती की अकीदियाँ तारीखियाँ, इस्तेदाद मलूकियत की तारीखियाँ, हामान की रस्सियों को सांप बना के दिखाने वाली तारीखियाँ, कारून की तारीखियाँ, उसी कौम का वो जेवर रहता है और उनकी प्रस्तुत चढ़ाता है लक्ष्मी देवी की, उससे ये वो तारीखियाँ जिनसे निकालना इस कौम का फरीजा था, बशर्ते कि ये खुद पहले तारीखी से रोशनी में आए। जो अंधेरे में या कमरे के अंदर, वो दूसरे को रोशनी क्या दिखाओ। और माने इसके ये थे कि शायद होना था इनको अकवाम आलम के आमाल का निगरान होना, और इनके आमाल की निगरानी करनी थी इनके निजाम की मरकजी कंट्रोल, मरकजी अथॉरिटी ने कुछ भी नाम रखिए इसका। हजूर के बाद खुलफाए राशिदीन नाम रखा ना हमने उनका, हजूर के जानकीन नाम रखा ना उनका हमने। ये जो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम पर मेरी सुन्नत व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन अलैकुम बसुन्नत व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरा तरीका जिंदगी जो है उसका इत्तेबा, और मेरे बाद जो मेरे सच्चे जानकीन आएंगे राह रास्ते चलने वाले उनका इत्तेबा तुम उनका लाजम है। तो हजूर ने तो खुद बनवा दिया कि मेरे बाद क्या निजाम होगा। ये कुरान ने तो ये कहा था कि ये मत समझ लो कि रसूल के चले जाने के बाद हम फिर अपने निजाम कोहन से लौट जाएंगे, जो लौट जाएगा वो खुद तबाह होगा, खुदा का क्या बिगाड़ेगा। हजूर के बाद इस निजाम में कायम रहना था जिन्हें आपने अपने खुलफा कहा है। अब हमने तो वो खुलफा, वो ठीक है, चार खुलफा तक हमने उसको मौजूद कर दिया और आगे ये सिलसिला ही खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए और जो जानशीन हजूर के होने थे उसी लेज पे चलने वाले शाहिद नूर की शमें हाथ में लिए हुए, उनका हमने चार तक सिलसिला खत्म कर दिया। तो हीजमन सोचिए कि उसके बाद हमारे लिए तरीके जिंदगी क्या रह गया। ये हजूर के जानशीन, ये इस निजाम में कायम रहना था कियामत तक, और जो भी इस निजाम को कायम रखने वाले थे वही थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा होने से जानकीन होने। दरमियान में बात आ गई, अभी मैं इज़ाम करूंगा। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमें फिर एक हफ्ते के बाद दीजिए मिलादुन्नबी की तकरीब सईद में शिरकत का मौका मिलेगा, अल्लाह करे मौका मिले। वो 31 जनवरी को है, यकम जनवरी को, पहली फरवरी को वो जुमा आता है अगला, तो वो उस जुमे के दिन जैसा कि यहाँ मामूल है वो खुसूसी दर्स हमें लीजिए कि वो रख लूंगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुजूर के जो कारनामे हैं उनके तज़किरे जलीला के लिए वो मुख्तस होता है। तो अगला जुमा का दर्स जो है खुसूसी वो उसके लिए मुख्तस होगा, क्योंकि बहुत आम चर्चा है इस्लामी निजाम का, इस्लामी निजाम का। मैंने पिछले साल भी आपको याद होगा इस तकरीब का उनवान मेरा यह था कि निजाम मुस्तफा है क्या, ये तो मैंने बताया था क्या है। आगे मैंने देखा कि बातें ये बातें चली हुई हैं कि उसका तरीक क्या है, वो होगा कैसा, वो किस तरह कायम होगा, ये बातें चली हुई दौर तो सुलझा रहे हैं और तेरा मिलता नहीं। बहरहाल अपने मुतल्लिक कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगली इस तकरीब सईद के ऊपर जो अगले जुमे का खसूसी दर्स है उसमें मैंने उन्वान ही ये रखा कि इस्लामी निजाम कैसे कायम होगा, यानी अब जो है नहीं, और कोशिश यही हो रही है उसको कायम करना। सवाल ये है कि वो कैसे कायम होगा, पहले तो मैंने बताया था होता क्या है, अगला सवाल ये है कि वो कायम कैसे होगा। तो ये अभी मैं अर्ज कर दूं, ये कार्ड ऐलान के छपे हुए हैं, एक चीज तब्दीली है, दर्श तो ये सारे मामले होता है ना, क्योंकि उसमें आम लोगों के पास भी ये ऐलान जाएगा और दूर दूर से लोग आएंगे, तो 9:30 की बजाय 10 बजे का वक्त रखा गया है। अगले जुमे को सुबह का दर्श 10 बजे इसी मकाम से उन्वान होगा, इस्लामी निजाम कैसे कायम होगा। ये कार्ड छपे हुए आप जाते वक्त लेते जाइएगा, जो आबाद इससे दिलचस्पी रखते हो उन तक पहुंचा दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ लाए, ताकि ये चीजें जो आप तक महदूद हैं इससे जरा और आगे भी बढ़ जाए। बहरहाल अब मैं आता हूँ फिर इसी दर्श के ऊपर। निजाम ये था कि ये उम्मत इसका मकाम इतना बुलंद था कि वहाँ बैठ कर ये अकवाम आलम के आमाल की निगरान रहे, और इनका मरकज मिल्लत, इनकी सेंट्रल अथॉरिटी रसूल सल्लम के बाद, वो इनके अमाल की निगरान रहे। ये है जो कुरान ने बताया, इन्ना अरसलना का शाहिदन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद कहा। और ये जो अभी मैंने सूरह बकरा की आयत 2 बताई, 143 शायद मैंने रेफरेंस नहीं दिया था, उसने जो ये कहा, तुम्हें हमने ये एक बैनुल अक्वामी उम्मत बनाया है, तुम्हारा फरीजा ये है कि तुम अकवाम आलम के आमाल की निगरानी करो, और तुम्हारे आमाल की निगरानी तुम्हारा मरकज जो है मिल्लत का वो करे। तो रसूलुल्लाह को जो शाहिद करार दिया, तो उसके बाद जमात मोमिनीन को भी उसी तरह से शाहिद कहा कुरान। वही बात फिर आ गई कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह और उसके मलाइका वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली बात, युसल्लून अला नबी, यहाँ कहा वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुह। देख लीजिए किस तरह से ये अकदार मिस्टर के लिए आती है, शाहिद है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शाहिद है ये पूरी की पूरी उम्मत, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम। निगरानी करने वाले का काम क्या है, आवाज देता चले जाए, इधर ना मुड़ना, रास्ते में डाकू बैठे हैं, खतरात हैं, नुकसान होगा, इधर आओ, सही रास्ता ये है, यूं नस्बुलैन के ऊपर मंजिल पे पहुंच जाओगे। ये काम होता है उसका, वो डंडा पकड़े हुए नहीं होता, वो शाहिद होता है, देख रहा होता है किधर जा रहे हैं। क्या बात है, शाहिद के बाद साहिब की ड्यूटी फरायज ये है कि वो ये बताए कि इधर ना जाना खतरात है, इधर जाना तुम्हारे लिए खुशहालिये हैं। साहिब व मुबश्शिरम व नज़ीरम, और ये सारे फरायज अब उम्मत के हो गए, जिनके अमाल पे ये शाहिद होगी उम्मत, उन्हें ये यही बताएगी ना कि इधर ना जाना, इधर आओ, इधर आओ। और इसके लिए अगले लफ्ज जो है उनका जो तर्जुमा है, वदाइयन इलल्लाह, ये बुलावा, दावत देते हैं ये, वो रास्ते से भटक जाने वालों को कहते हैं कि न जाना इधर, तबाह हो जाओगे, आओ इधर, इधर अल्लाह के रास्ते की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, उसके कानून के मुताबिक। याद रखिए, इज़्ज़त का लफ्ज़ जो है ये हमारे यहाँ तो इजाजत के मानों में आता है ना, बड़ी आसानियां पैदा की तारीखियों में रहने वालों ने, साहब ये कुछ तुम करते क्यों नहीं हो, कहा उसने तो कहा बिज नहीं, हमारी इजाजत हमारे हुक्म के मुताबिक तुम करोगे, तो हमें तो उसने इजाजत ही नहीं दी अभी तक, तुम करें कैसे, बैठे हैं जब इजाजत मिलेगी जाएगी, चलो जल्दी दिखाएगा तो गाड़ी चलेगी। ईजन का तर्जमा ये किया, और उसके बाद उसकी तरफ से ईजन तो इनको मिलता नहीं है, ये सर तुम करेंगे। इसमें मन एक एक लफ्ज से गौर करने की बात है कि साजिशें हुई कैसे आप, कानून किसके माने, पुनः कानून खुदाबंदी के मुताबिक दावत दो तुम, और कानून वो क्या है, अधीसा से मान, ये नहीं कहा कि قانون خداوندی کے مطابق کہا کہ دعوت دو اور خود بتایا نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. 12:108 کل ہے رسول آواز دے دو حاضر ہی سبیلی, یہ ہے وہ راستہ جس کے اوپر مجھے چلنے کا حکم ہوا اور میں چل رہا ہوں. میں تو چل رہا ہوں, تو فریضہ ختم ہو گیا کہ مجھے اوروں سے کیا, میں تو چل رہا ہوں نا. ٹھیک, آؤ اس راستے سے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے, تو وہی ہے نا داعی نے اللہ. تو یہاں پھر یہی چیز ہوگی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خدا نے حضور سے کہا کہ کہہ دو ان سے کہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اس راستے کی طرف. کہا الا بصیرت,
بصیرت کی روح سے ریزن پر مبنی ہے, ریشنری دعوت دیتا ہوں کہ حکمت پر مبنی ہے, فکر و تدبر اور شعور پر مبنی ہے, بصیرت پر مبنی ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ کا فریضہ ہوا, فرمایا انا میں بھی یہی کرتا ہوں, ومن اتبعنی اور جو میرے فالوورز ہوں گے امت محمدیہ کہلائیں گے وہ بھی یہی کریں گے. جس میں پھر امت آ گئی, وہ جو فریضہ خدا نے رسول کا بتایا ہے اسی خدا نے رسول کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں ہی نہیں, ورنہ بات ختم ہو جاتی. حضور دنیا سے تشریف لے جاتے, بعد میں ختم نبوت سے کوئی نبی آنا نہیں تھا, تو معاملہ تو وہیں ختم ہو کے رہ جاتا. آپ دیکھیں قدم قدم کے اوپر کیسے بعد میں آنے والی عمر کے ذمے وہ فریضہ لگا رہے ہیں رسول اللہ, جو حضور کا فریضہ قرار دیتا ہے خدا. اس طرح اس سلسلے میں آگے رہنا تھا, یوں اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں رہنی. ہاں نا, ومن اتبعنی 12:108 داعین اللہ, میں نے عرض کیا حضور کو شاہد کہا, امت کو شاہد کہا, نذیر و بشیر کہا, داعین اللہ کہا, حضور نے خود امت کو اس کے اندر شامل کر لیا. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, کیا بات, روشنی کی طرف لانا تھا نا, چھوٹا سا دیا ہی نہیں کہا, سورج کہا. سورج خود روشن ہوتا ہے اور آگے ہے منیرہ کا لفظ بھی. سورج ہی کہا جاتا تو اتنا ہی کافی تھا, خود روشن ہوتا ہے دوسروں کو روشنی دیتا ہے. تاکیدن اس کے ساتھ منیر کا لفظ لگا دیا, منیر کے معنی ہی ہیں دوسروں کو روشنی دینے والا. یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ خود ہی روشن نہیں ہے, دوسروں کو روشنی دیتا بھی ہے. یہ اب روشنی جو ہے سراج منیر, حضور کے بعد یہ روشنی کیا ہے؟ قرآن کریم کو, قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سراج منیرہ کہا, طبی طور پہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے, وہ آفتاب جہانتاب جو ہے اب قرآن کی شکل میں اس امت کے پاس ہے. خود روشن, دوسروں کو روشنی دینے والا, کتاب منیر, یہی لفظ جو منیر ہے یہ اس کے لیے بھی ہے, یہی لفظ جو سراج ہے یہ اس کے لیے بھی. اب حضور کی تشریف لے جانے سے کوئی کمی واقعہ نہ یہاں ہوئی, وہی سراج منیرہ جو ہے, وہ سراج منیر تو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے. سورہ نور کی آیات میں نے بتایا تھا قرآن نے کیسے کیسے محفوظ رکھا, کہا ہوا ہے وہ ایک فانوس نہایت محفوظ شیشے کے لیمپ کے اندر اس طرح سے چلتا ہوا, یعنی آندھی دھکڑ ہوا زمانے کی بجھائی نہ سکے, وہ تو یوں محفوظ ہے. لیکن اگر آپ اسے تہہ دامن رکھ چھوڑیں تو اس کا سراج منیر ہونا فائدہ کیا دے گا؟ وہ تمہاری راستے پر روشن نہیں کرے گا, دنیا کو روشن کیا کرنا ہوگا؟ اور اگر آپ اندھیری رات میں چلیں اور روشنی جو آپ کی ہے وہ پیچھے رہے, تو نہ صرف یہ کہ آپ کا راستہ روشن نہیں ہوگا اور زیادہ تاریک ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, ماضی تو آپ کی چمکدار ہوتی ہے, مستقبل آپ کا تاریک ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ان قوموں کے ساتھ جب بھی ان سے پوچھو وہ کہیں گے ہمارے اسلام نے یہ کہا ہے, فلاں امام نے یہ کہا, فلاں محدث نے فلاں دور میں ہماری سلطنت دیکھی ہے, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہم نے پیدا کیے, جناب زبین میں ہم نے وہ کچھ کیا, الحمرا کو جا کے, یعنی ان کا سارا پاس ہی روشن ہو رہا ہے, یہ لیمپ پیچھے رکھا ہوا ہے انہوں نے, اپنا راستہ تاریخ کا تاریخ ہے. اس نے پہلے ورق میں یہ کہا تھا وہ بل آخرت یوقنون, مستقبل پر ایمان رکھنے والی, یہ ماضی پر ایمان رکھنے والی قوم. سراج منیر, یوں ہی بات میں سے بات نکل آئی. قرآن کریم کے متعلق یہ کہ یہ واقعی علم خداوندی پر مبنی ہے, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا. چاند بھی روشن ہوتا ہے, سورج بھی روشن ہوتا ہے, دونوں کی روشنی میں کیا فرق ہے؟ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں بتا سکتا تھا کہ روشنی میں کیا فرق ہے, روشن ہوتا ہے. آج کی سائنس کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ سورج تو از خود روشن ہے, چاند از خود روشن نہیں ہے, یہ سورج کی روشنی ہے جو اس پہ پڑتی ہے اور وہ پھر اس کو منعقد کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے. اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی. اور اب تو جان پر جا کے انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ خود روشن نہیں ہے. یہ آج کی سائنس کا انکشاف بتایا جاتا ہے, علم الافلاک کا. ٹھیک ہے, بہت بڑا انکشاف ہے, سائنس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ یہ کرے. لیکن ذرا ایک لفظ کو دیکھیں, 1400 سال پہلے, عزیز آنے من ایک لفظ ہے. پہلے میں اس لفظ کے متعلق یہ بتاؤں, ہمارے ہاں جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو, تو تلاوت کے تو معنی یہ ہوتے ہیں نا, یہ پڑھا کرو, ناظرہ ہی پڑھا کرو, معنی معنی کچھ نہ بے شک ہوں, تلاوت ہے قرآن کریم, یہ معنی ہو گئے نا. یہ لفظ تلاوت کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, پیروی کرنا, اتباع کرنا. قرآن کی تلاوت کے معنی ہے قرآن کا اتباع کرنا. بنیادی طور پر اس لفظ کے یہ معنی ہے, کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. وہی بات سورہ الشمس ہے, 91 سورہ. والشمس ودھاہا, سورج اور اس کی روشنی. والقمر اذا تلاہا, اور چاند جو اس کے پیچھے پیچھے بھیک مانگتا ہوا پھرتا ہے اس کی روشنی کے لیے. اللہ اللہ تلاہا, وہ اس ہا کو بھی پوچھئے کہ یہ اسی طرح سے, یہ جو گردشیں اب کروں کی بتا رہے ہیں نا, یہ نظام شمسی جسے ہم کہتے ہیں, یہ کس طرح سے اس کے گرد گھوم رہے ہیں. اور یہ بات کہ وہ تو ہے از خود روشن, اور یہ اس سے روشنی کی بھیک مانگنے کے لیے, مستعار لینے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے, دے گا دادا خدا کے نام پہ. آہا, 1400 سال بعد آج کا علم الاخلاق کا ماہر یہ کہہ رہا ہے, چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی, یہ سورج سے مستعار لیتا ہے. تلاہا, عزیزا نے مان, دور آ رہا ہے قرآن کا, اس قرآن پہ یہ قومیں ایمان لائیں گے. وجد میں آ جاتی ہیں جب اس قسم کا لفظ ان کے سامنے آتا ہے. سراج منیرا, سورج آج خود روشن, اور روشنی بانٹنے والا, روشنی دینے والا, یہ ہے قرآن. آج خود روشن, یہ بتانے کے لیے کہ وہ سورج ہے, وہ اس کی روشنی ہے, کسی لیمپ کی ضرورت پڑتی ہے؟ موم بتی جلا کے دیکھتے ہیں کہ سورج ہے وہ. آفتاب آمد دلیل آفتاب, وہ تو خود اپنے وجود کی آپ دلیل ہوتا ہے, روشن جو ہوتا ہے. تو قرآن کریم اپنے مفہوم کے بیان کرنے میں کسی خارجی روشنی کا محتاج ہی نہیں ہے, یہ تو سورج ہے, اور یہ تو روشنیاں دے گا. تم انسانوں کے ذہنوں کے موم بتیاں لیے ہوئے دکھاتے پھرتے ہو کہ وہ آفتاب ہے, قرآن تہ دامہ اسی لیے آگے عزیزہ نے مان کہ ہم نے اس کو محتاج سمجھا ہے انسانوں کی روشنیوں کا. انسانوں کے ذہن میں تو روشنی اس نے پیدا کرنی تھی, اس کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور اپنے دیوں اور اپنی موم بتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دکھا رہے ہیں صاحب کہ سورج کیا ہے اور کیسا ہے اور کہاں ہے. یوں ہی بات کیا بتائیں ذہنوں میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس تو سب بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں, ایسے سوئے ہوئے ہوتے ہیں قیامت تک جگانا مشکل. پہلی چیز تو یہ تھی ان کے ہاں کی کہ یہ جو روشنی میں نکلتا ہے مومن تو اس کا فریضہ تھا دوسروں کو بھی روشنی دے. ان کے ہاں صورت یہ ہے یہ تصوف کے اندر کہ جو کچھ کسی کو یہ تو چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا, جو کچھ کسی کو وہ کہتے ہیں ملتا ہے نا وہ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتا. پوچھو کہ صاحب حضرت صاحب کیا منکشف ہوا آپ کے اوپر, کیا ایک اچھاف ہوا, کیا الہام ہوا, کس طرح سے تم نے خدا کو دیکھا, کیسا اس کا جلوہ دیکھا کیا. کہا کہ بھائی بیٹے ذوق ہی میں نہ شناسی تا نہ چش, بھائی یہ تو شراب ہے, میں بتاؤں تمہیں کیا کہ نشہ کیا ہوتا ہے, یہ تو پینے والے کو ہی پتا چل سکتا ہے, خود پیو تو پتا چلے. یعنی یہ اسی تک محدود ہوتا ہے جسے یہ مغز اسلام کہتے ہیں مغز دین کہتے ہیں. وہ مغز دین میں ابھی یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ ہوتا کیا ہے, وہ تو کبھی بتاؤں گا پھر, لیکن جو کچھ بھی ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی تک ہوتا ہے. اقبال نے اپنے خطبے میں بڑی عجیب تصویر دی ہے. ایک عبد القدوس گنگوہی علیہ الرحمہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں, ان کا ایک قول نقل کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ عبد القدوس گنگوہی نے کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی بلندیوں پہ جانے کے بعد پھر اسی دنیا میں واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر میں وہاں جاتا تو کبھی واپس نہ لوٹتا. بڑی عمدہ بات اقبال نے کہا ہے کہ یہ فرق ہے دین میں اور تصدق میں. وہ اگر کہیں پہنچ بھی جاتا ہے تو دنیا انسانیت کی طرح واپس نہیں آتی, وہ خود ہی اپنے نشے کے اندر ماؤ ہوتا. رسول کا فریضہ یہ ہے کہ جب اسے خدا کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے تو اس کو لے کے دنیا انسانیت کی طرف آتا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے کون آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ ہے فرق, اور یہی امت مسلمہ کا یہ فریضہ تھا. اب اگر انتہا ہے وہاں تو خیر دوسرے کو بتا ہی نہیں سکتے. شریعت میں بھی تو اپنی اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے نا, تو اپنی سنبھال دینا اورنا کی, ہر فرد کو اپنی نجات کی فکر. یہاں کہا گیا ہے کہ اگر تم تاریکیوں سے روشنی میں آ گئے ہو تو دنیا کو روشنی دکھاؤ جا کر. تم تو شاہد ہو, مبشر ہو, نذیر ہو, داعی اللہ ہو, سراج منیر ہو. کہا اے رسول یہ جو فریضہ ہم نے بتایا ہے مومنین کا, وبشر المومنین, جھوم جھوم کے خوشخبری دے اس جماعت مومنین کو کہ تم نے یہ کچھ کیا. بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, خدا کی طرف سے تمہیں بڑی خوشحالیاں ملیں. فضل کا لفظ بڑا جامع ہے قرآن کے اندر, لیکن یہ زندگی کی خوشحالیوں کے لیے آتا ہے, فارغ البالیوں کے لیے آتا ہے. کبیر, بہت بڑی بڑی خوشحالیاں اور فارغ البالیاں ملیں گی تمہیں, یہ فریضہ سر انجام دو گی. لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے, بڑی کڑی شرط, ولا تطع الکافرین والمنافقین. یہاں کفار اور منافق دونوں کہہ دیے. وہ جو اس دین سے اعلانیہ انکار کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, ان کی بھی کوئی ہدایت نہ کرنا یار, ان کی کوئی بات نہ ماننا. اور دوسرے یہ کہ جو بظاہر اقرار تو کرتے ہیں لیکن دل سے اسے نہیں مانتے, ان کی بھی کوئی بات نہ ماننا. ये एहतियात बताई इसके लिए। तारीकियों और पस्तियों और मोहताजियों में रहने वाली कौम जो है कसे बाचुत, इसको अपना नाम कुछ ही क्यों ना रख ले, वो तो कदम कदम पर मुनाफिकीन और कुफार की मोहताज होती। यही नहीं है कि वो इनसे अपनी अतायत कराते हैं, ये तो हर मामले में उनकी तरफ मुंह करके देखते हैं कि क्या इरशाद है हजूर, क्या हुक्म है उन्हें। मोमिन जो आलान होता है उसने तो इनके अमाल की निगरानी करनी, वो इनकी अतायत करेगा। इसीलिए ये कह दिया जी कि याद रखो ये एहतियात बरतनी, ये दो चीजें इकट्ठी नहीं हो सकेंगी। तुमने तो इन्हें रास्ता दिखाना था, तुम इनकी रहनुमाई के मोहताज हो रहे हो, इनकी फरमा बरदारी उनकी हदायत के पीछे चलने वाली बात। वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, कहा याद रखो कि इस तरह इस किस्म की ये जो कौम है बड़ी बड़ी है उनको यूं मुंह फट जवाब दे देने वाली बात जो है, हम तुम्हारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, खा तुम कुफार हो खा मुनाफिकीन भी क्यों ना हो, मुसलमानों के भेस में भी क्यों ना तुम आए हुए हो। कहा हम जानते हैं तुम्हारे दिल में ये ख्याल होगा कि साहब ये तो सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेने वाली बात है। कहा ठीक है, ये तो लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी, अरबो अजम के साथ लड़ाई जो हजूर ने फरमाया था जंग मोल लेनी पड़ेगी। जब एक की तरफ तुम सिर्फ मुंह करोगे तो बाकी सब की तरफ पीठ होगी तुम्हारी, बजाक वक्त दो की तरफ दो रूहों की तरफ से तुम मुंह कर नहीं सकते, ये होगा मुखालफत होगी। वदाजा हूं परवाह न करो इन मुखालफत की, क्या करें, तवक्कुल अल्लाह कवानी ने खुदाबंदी पर पूरा भरोसा रखो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वकफा बिल्लाह वकीला, जिसकी जिसका एतमाद उन कवानीन के ऊपर हो उसे दुनिया में किसी और की जरूरत क्या रहती है। कफा बिल्लाह, काफी है तुम्हारे लिए एतमाद कवानीन खुदाबंदी के, ये दिया बुझेगा ही नहीं, ये सराजे मुनीर ये कहीं तारीकी रहने नहीं दे, इसे लेके चलते जाओ, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तो कहा जफर अली, ये दरमियान में अजीजा ने मन एक बात आई थी कुरान की, बात चली आ रही थी माशरती जिंदगी की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर घर की जिंदगी से बात शुरू की थी कुरान ने, और ये इसलिए कहा था कि ये हम हदायात दरमियान में देते चले जाते हैं कि घर की जिंदगी अगर सुकून और मुद्दत और मोहब्बत और रहमत की नहीं है तो बाहर की जिंदगी में तुम कभी किसी इत्मीनान कलब से कोई काम कर ही नहीं सकोगे। इसीलिए वो दरमियान में फिर वही बात ले आता है, घरों की जिंदगी आयली जिंदगी, यहाँ फिर वो आयली कवानीन की बात आ गई। मैंने खटस हुई थी मुझे पैदा के ये चीज जो है समझते हुन्ना वसर्रे हुन्ना सराहन जमीला, ये आकाम जो है आयली जिंदगी के मुतल्लिक, निकाह और तलाक और मेहर और इद्दत, और ये मुख्तलिफ मकामात पर हैं, जामे तौर पे तो सूरह बकरा में भी ये दिए गए हैं, फिर ये सूरह निसा में भी दिए गए हैं, सूरह तलाक में भी दिए, मुख्तलिफ मकामात पर हैं। मैं वो सारे कवानीन जो है वो नहीं आपके सामने लाना चाहता दर्स के अंदर, दर्स में इन चीजों की जरूरत नहीं, वो कवानीन जो हैं वो जमा है, जरूरत पड़े आपको तो मैंने आप अहबाब की सहूलत के लिए उनको अलग भी, कुरानी कवानीन मेरी ये किताब है छोटी सी, कवानीन कुरान के जो हैं वो मैंने उसमें दर्ज कर दिए हुए, यहाँ मैं उन कवानीन जहाँ जहाँ आएंगे उनके ऊपर छछलती हुई एक निगाह डालता चला जाऊंगा, उनकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, वो कानून की बात है ना, जब कोई मामला आके पड़ेगा उस कानूनी तौर पे देखने को तो वहाँ देखा जाएगा कि कुरान इसके मुतल्लिक क्या कहता है। यहां मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, बात वहां कही है जहां ये मियां बीवी की इस दवाजी जिंदगी के अंदर वो मरहला आ गया जहां आपस में उनकी निभ नहीं सकती। कुरान निकाह को एक मुआहदा करार देता है। मुआहदा दो फरीकैन की बाहमी रजामंदी से कायम होता है। अब सीधी सी बात है कि जो मुआहदा दोनों की रजामंदी से कायम होगा तो वो रजामंदी से उसके अंदर ये क्लॉज होती है, रजामंदी से वो मुआहदा टूट भी जाए। लेकिन यहाँ आपके यहाँ जो राइज है फिका के कानून, उनकी रूह से ये चीज है, उस लड़की से उस औरत से कहा जाता कि रजामंदी तो आप दे दो तुम इसकी को, और जो ही उसने यहाँ कहा उसने कहा लो अब टूट नहीं सकता तुमसे ये जी हंस गए। मर्द को तो ये हक हासिल है कि जिंदगी में जब चाहे खड़ा खड़ा वो कहे तलाक 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 तो मामला खत्म, और जो फ्री के सानी जिसकी रजामंदी के बगैर ये मुआहदा हो ही नहीं सकता था, अब उसको कोई अख्तियार ही नहीं है इसका। वो अगर इन हालात में है तो फिर पूछो नहीं, फिर वो क्या क्या उसके लिए रास्ते में क्यामतें बरपा की जाती हैं। अजीब चीज है। मैंने कहा था कि मैं ये कानून की बात नहीं छेड़ूंगा, लेकिन माफ रखिएगा मुझे छेड़नी पड़ गई एक छोटी सी बात। वो इसलिए कि करीबन करीबन कोई हफ्ता नहीं गुजरता कि मेरे पास इस किस्म के इस्तफसारात नहीं आते, और वो वही बात कि कौम जज्बाती है, गुस्से में आ जाता है फौरन आदमी। नमक भी ज्यादा पड़ा किसी दिन हंडिया के अंदर, और खड़े खड़े ही उसको कह दिया कि तलाक तलाक तलाक, और वो किस्सा हुआ खत्म। रो रही है वो, बैठी हुई है, जा रहे हैं मुल्ला जी के पास, मियाँ जी के पास, फिका के कानून के पास। उसने कहा कि ये तो साहब नकाह तो हो गया फिस्क, अब क्या हुआ? कहने लगे कि वो इस दिन दोबारा वाली बात, कहने लगे ऐसे थोड़ा है कि दोबारा ही तुम आपस में ये कुछ कर लो। जैसा मैंने पहले भी कहा था, दोहराने को जी नहीं चाहता, शर्म आती है कि अब तो हलाला करना पड़ेगा। भाई वो हलाला यानी बीवी, इस बीवी को दोबारा हलाल करना पड़ेगा। वो हलाल करना पड़ता है पंजाबी वाला, इन छुरी फिर तेरे लिए हलाल हो जाएगी। इवें हूं ना, बकरे से छुरी फिरते है तो थोड़े लिए हलाल हो जाता ना, जिसे छुरी फिरती हैगी है और की वास्ता, इन हलाल कर तेरे लिए हलाल हो जाएगी। किवें करना जी माली साहब एक शब्द के लिए इसका निकाह कर दीजिए किसी दूसरे से। मैं नहीं कह सकता वीजा ने मान ये बात। गुस्सा इसको आया, माफ रखिएगा, अफवाह इसने की, जबा वो हो रही है। मैं ये कद मैंने कहा था कानून की बात, तो मुझे हर वो हफ्ते ये जवाब देने पड़ते हैं कि ये फिका को भी छोड़ो। मैं उनसे कहा हूं कि बाबा आजकल ना तो ये फिका की बात पूछो ना कुरान की बात पूछो, इस मुल्क के अंदर ये कुरान का कानून तो है नहीं। इस वक्त इत्तेफाक से ये फिका का कानून भी राज नहीं, राजुल वक्त कानून जो है इस वक्त वो फैमिली लॉज हैं। दुआ कीजिए कि वो किसी तरह से इनकी दस्त बुर्ज से महफूज रहे। जब से वो बने हैं 20 साल हो गए हैं, ये उसके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर उनको तोड़ के रहे। एक तो टुकड़ा उसका तोड़ दिया ना इन्होंने शरीयत बेंच ने कि यतीम पोते को विरासत नहीं मिल सकती। क्या बात है, कितना बड़ा काम किया, पहला फैसला शरीयत बेंच का। तो वो जो है राइजुल वक्त कानून जिनको फैमिली लॉज कहते हैं, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, लोगों को पता ही नहीं है इसका कि आजकल ये कानून कुरान का तो था ही नहीं है। पहला इत्तेफाक से ये जो फिका का कानून है ना, ये तड़ाक 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 वाला, वो भी आजकल नहीं है राइज। फैमिली लॉज राइजुल वक्त कानून है मुल्क का। कोई तलाक जो उसके मुताबिक नहीं है वो कानूनन तलाक ही नहीं है, वो होती नहीं तलाक। और ये सुन लीजिए वो कानून क्या है कि मियां बीवी में जब कोई मुनाक्षा हो, और आप हैरान होंगे इत्तेफाक समझिए या हुस्ने इत्तेफाक कि ये कुरान के करीबन मुताबिक है। कुरान ने ये कहा था कि जब आपस में कोई मुनाक्षा इस किस्म का हो कि वो खुद ना सुलझाएं सुलझा सकें, तो रायजुल वक्त कानून ये है कि ये जो एक उस जमाने में ये काउंसलर होता था, अब भी गालबन इन्हीं को वो ड्यूटी दी हुई है, वो मालूम है, उसे दरखास्त देनी पड़ती है, खा वो मियाँ हो खा बीवी हो, कि हमें मनाक्षा हो गया है। उस कानून में ये है कि वो काउंसलर जो है वो एक एक सालसी बोर्ड कायम करेगा, ये कुरान के अल्फाज है, वो सालसी बोर्ड 3 महीने तक कोशिश करता रहेगा इनमें मसालियत करने की, अगर मसालियत हो जाए तो फबेहा, ना हो तो उसके बाद वो ये बात फैसला करेगा कि भाई ये मसालियत नहीं हो सकी, इसलिए ये निकाह का रिश्ता जो है वो फस्क होता है। ये उस वक्त होगा, इस प्रोसीजर के बगैर रायजुल वक्त कानून के मुताबिक तलाक हो ही नहीं सकती। तो कम से कम इसे तो आप सुन रखिए कि अगर ऐसा कोई मामला आ पड़े तो उन्हें बताइए कि आजकल रायजुल वक्त कानून है और इसका बड़ी दूर तक असर जाएगा। अगर ये तलाक नहीं हुई है रायजुल वक्त कानून के मुताबिक, आपने अपने जहन में समझ लिया कि यहां तलाक हो गई, आपने अगर दूसरी शादी कर ली है तो उस कानून में ये भी है कि बीवी पहली बीवी की रजामंदी के बगैर अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो साल भर की कैद भी हो जाती, तो वो तो आपकी बीवी है कानून की रूह से, उसमें तलाक तो नहीं पड़ी कानून। फिर आपकी वफात के बाद बीवी हकदार होती है आपके तरके में, आप समझे बैठे हैं कि मैंने तलाक दे दिया, अब उसका तो हिस्सा कोई नहीं है, कानूनन तो वो बीवी है। और फिर ये सोच लीजिए दूसरी तरफ कि वो कानूनन अभी बीवी है, आप उसके खावन है, वो दूसरी जगह निकाह भी नहीं कर सकती। देखते हैं कहां तक इसका असर पड़ रहा है, यहां मजाक समझा हुआ, रोज ये आ जाते हैं कि साहब ये कुछ कहा और उसके बाद उसने तलाक समझ ली, इसने भी निकाह कर लिया, उसने भी निकाह कर लिया, क्या हो रहा है? तो बाबा कुरान को तो छोड़ा था तुमने, ये मुल्क का जो रायजुल वक्त कानून है उसको ही सामने रखो अपने। वो सामने इसलिए नहीं रखते कि जब ये आयली कवानीन वही है तो मुल्क के अंदर ये नजरात की तरफ से शोर मच गया, हम इन्हें कानून ही नहीं मानते, ये है ही नहीं, यानी इनके ना मानने से गोया वो कानून रहेगा ही नहीं। यहां तक कह दिया आपके यहां के दौरे जदीद के मुफस्सरीन ने कि अगर कोई शख्स इन कवानीन के मुताबिक तलाक देगा, हम उसे तलाक ही तस्लीम नहीं करेंगे। मुलाजा फरमाओ ये हम कौन हैं? और अपने यहां नहीं, किसी जगह भी ऐसा किया उन्होंने, दूसरों को ही कहते चले दूसरों को कहते चले गए। मरदान में एक हमारे मौली साहब से बड़े जरी मौली थे, कुरानी मौली, उनके खिलाफ कुफर का फतवा लग गया, प्रधानों का मुल्क होता है, मौली साहब ने यह कह दिया कि जो उनको जाके मार देगा वो शहीद हो जाएगा, जन्नत में सीधा चला जाएगा। वो एक शख्स आ गया, वो लगातार दौड़ा करता हुआ, उसको बुला लिया मौली को, बड़े जरी थे मौली साहब हम जानते, तो उतरा उनसे, उनसे कहा कि क्या बात है इस तरह से तुम खंजर बदस्त चले आ रहे हो, कहने लगा वो मौला ने फतवा दे दिया है ये कि जो तुमको कत्ल कर देगा वो शहीद हो जाएगा, सीधा जन्नत में चला जाएगा, तो मैं इसलिए आया हूँ उनको। कहने लगे वो ठीक है मैं यही खड़ा हूँ, मैं एक बात कहता हूँ वो कह रहा हो और फिर आके मुझे बिशक मार देना, मैं ऊपर भी नहीं जाऊंगा। कहने लगे जी क्या बात? कहने लगा मुल्ला से पूछो कि तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं है जो मुझे तैयार कर रहे हो। वो फिर वापस नहीं आया। यहाँ तो होता ही है, चढ़ जा बच्चा सूली राम बली करेगा, तेरी बली करेगा। बात यहाँ हो रही थी कुरान की, मैंने इसलिए अर्ज किया है कि बिल्कुल लोगों को पता नहीं है कि आजकल इसके मुतल्लिक एक रायजुल वक्त कानून है, लापता है पूरा दायरी कवानीन, एक नहीं है कई कानून है उसके अंदर। कानूनन ये चीजें वैलिड जिसको आप कहते हैं वो उस सूरत में हो सकती हैं कि उनके मुताबिक कुछ किया जाए, वो उसके मुताबिक ना किया जाए तो ना निकाह निकाह होता है ना तलाक तलाक होती है। ऐसे सब कुछ राजी होता है। मैं कह ये रहा था कि आप आइए, कानून नहीं मैं बताऊंगा, कुरान बताऊंगा। मुनाक्षा इख्तलाफ मुखातमत नहीं बन सकती, अलग हुए ये चीजें जो हैं, जाहिर है कि आपस में वो ताल्लुकात मोहब्बत के और हुरूमत के तो नहीं रहते। सुनिए कुरान, कहा है कि ये जो तुमने अपने साथ मोहब्बत का अहद उस्तवार किया था, उस जमाने की तो बात छोड़ो, उसमें तो हर चीज तुमने खुशाइंदी से की थी। कहा अगर ये तोड़ने लगे हो इस चीज को, वह सर्रे हुन्ना सराहन जमीला निहायत हुसनकाराना अंदाज से तोड़ोगा कुछ नहीं। वो तोड़ते वक्त ये कहता हूँ, मेरी बेटियों तुम कहती हो, पूछती हो कि औरत को कुरान ने क्या दिया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कौन बताए तुम लोगों को कि जिसकी ये कैफियत है कि बाबा ये बांधते हुए तो ये कुछ किया ही था। वाजे बजाय सन नचावरा कीतियां सन, भूमि के चढ़े सौ जहेज दिया था, दाज दिया था, मेहर मांगा था, जश्न मनाया था। कहता उस वक्त तो ये किया था तुमने। हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर ऐसा वक्त आ जाए, इख्तलाफ है कोई बात नहीं, तोड़नी भी पड़े सराहन जमीला, वरना दुनिया में तो यही होता है, माफ रखिएगा, किसी और माने में ये मिसरा ना ले लीजिएगा। है वो मेरी लग्जरी किसे ने ना देखी, टूटदी नु जग देखदा। यानी ये टूटदी जड़ी हैगी है, दुनिया में बदतरीन शक्ल अख्तियार किए हुए होती है, दुनिया में जिल्लत होती है, और मुतल्लिका औरत की तो कोई कीमत ही नहीं रहती हमारे माशरे के अंदर। ये कैफियत तो उस बेचारी की होती है। तलाक जो दी जाती है तो उसके बाद, यानी उसके बाद हुस्ने सुलूक उसके साथ, जिनके साथ मुआहदा ये है, वो ये कहता है, इतना ही नहीं कहता कि मत्ते वो हुन्ना, कि ठीक है वहां तो तुमने कहा था कि वो कुछ जहेज माँ बाप ने दिया, तुम भी लाए थे भरी अपने हाथ ही, बहुत कुछ साजो सामान लाए थे उस वक्त। कहा उस वक्त लाने को तो दुनिया लाती है, ये जो इनकार तो तोड़न लगा है ना, मुनकते हुए हैं ताल्लुकात। कहता है मत्ते हु ना, जिस तरह उस वक्त तो बड़ी लाए थे ना, ऐसी ही बड़ी दे के इसको तोड़ो, वह सराहन आजाद करने लगे हो ना, सरहन के माने ये मुआहदे को तुमने कसर किया है ना, अलग होने लगे हो, अलग होना है जमीला। क्या लफ्ज है जमीला, अजीजा ने मान खुश आइंदगी वगैरह के लिए भी लफ्ज अरबी में बहुत थी, जमील का लफ्ज जवाब है, दाद नहीं दी जा सकती। बीवी के मुतल्लिक कहा गया है, इससे दुश्मन न हो। ये है जो कुरान दरमियान में लाता है, जो कवानीन की बात, आयली जिंदगी की कवानीन की बात, उसमें ये बातें हैं देखने की कि वो कहता क्या है। सराहन जमील, हाँ, पांच मिनट तो हैं अभी, बहरहाल आगे कानून की बात ही है, जल्दी से मैं आगे चला जाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी वही कवानीन थे जो आम मोमिनीन के थे, लेकिन बाद मकामात ऐसे थे कि जहाँ उनके लिए खसूसियत से एक बात कही थी, और वो जो खसूसियत से कही थी ना कि ये तुम्हारे ही लिए है, अजीब बात है। होना तो ये चाहिए था कि अगर और नहीं तो बहरहाल रसूल हैं, सरबराए ममलकत हैं, इनके लिए जो एक्सेप्शन को की गई तो इनको कुछ मराद ज्यादा देनी चाहिए बाकियों से, ये नहीं है। बाकियों के मुकाबले में पाबंदी ज्यादा लगाई जा रही है, और कहा कि ये तुम पे ही हम लगा रहे हैं, इन पे नहीं लगा रहे, रसूल की पोजीशन, जिनके रुतबे हैं सवा, उनकी सवा मुश्किल है। जहाँ सूरह निसा में कुरान ने कहा है कि कौन कौन से रिश्ते हराम हैं, कौन कौन से हलाल हैं, उन हलाल रिश्तों के अंदर चचा की बेटियां, मामू की बेटियां, खाला की बेटियां, तो ये सब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये कहा गया है कि ये तुम्हारे लिए उसी सूरत में हलाल है कि ये वो हों अल्लाह की हाजर न मार। मोमिनीन के लिए ये नहीं थी कि जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, इनमें से सिर्फ वही तुम्हारे लिए जायज है, बिला मशरूत थी ये। चचे की बेटी, मामू की बेटी, खाला की बेटी, ये तो है ना आम। वहां जो आम मोमिनीन के लिए आकाम है सूरह निसा में, वहां मोमिनीन के ऊपर ये शर्त नहीं है। रसूलुल्लाह के मुतल्लिक ये शर्त आयद की हुई है कि ये जो मुहाजिर बन के आए ना, ये पनाह की तलाश करेंगी बेचारी। अब भी हमारे यहाँ ये जो हम आए थे उस जमाने में, پناہی تیرے نام کیا جانتا سی. یاد ہے آپ کو یہ اصطلاح تھی ہمارے, مسکین ہے کہ پناہی ہے. مسکین وہ تھا جو پہلے یہاں رہتا تھا اور پناہی ان کو کہتے تھے مہاجرین کو, ہوتے یہ ہے. تو یہ جو آ رہی ہیں یہ بے ساز و سجرات آ رہی ہیں, گھر میں ان کے ماں باپ بھی شاید وہاں رہ گئے ہیں, کوئی ان کا ساتھی نہیں, کچھ ان کے ساتھ شادی کرنے میں ملے گا بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی لگا دی گئی کہ اگر شادی کرنی ہے تو یہ تمہارے لیے, کہتا کہ بیٹیاں ماموں کی بیٹیاں عام تو ہیں, عام سے نہیں, یہ جو بچاری پناہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں آ رہی ہیں, یکا و تنہا رہ گئی ہیں, کوئی مونس و غمخار ان کا نہیں رہ گیا. رسول کے لیے ضرورت ہے کہ تم صرف ان سے کرو. یہ ایکسیپشن دی جا رہی ہے سربراہ مملکت کے حق میں, خالصتا لکا من دون المومنین, تمہارے لیے. مکے سے بہت سی عورتیں اس زمانے میں چلی آ رہی تھی چھوڑ, عجیب وہ نقشہ تھا. عزیزہ نے من قرآن کے ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس پاس منظر کا سامنے رکھنا بڑا ہی ضروری ہے جب بات سمجھ میں آتی ہے. مکے میں سارے کفار تھے, مغیر مسلم تھے, ہجرت کر کے پہلے ہجرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاندان تک آ گئے. بہت سی مسلمان عورتیں وہاں رہ گئیں جن کے خاوند ابھی تک کافر تھے, وہ انہیں چھوڑ چھوڑ کے چلی آئی ہے. آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ قرآن نے اس باب میں کتنے بڑے عدل اور انصاف کا حکم دیا تھا, لیکن وہ تو ان کو چھوڑ کے چلی آئی پناہ ڈھونڈنے کے لیے, تنہا بے ساز و جراح اس طرح سے وہ آئی تھی. یہ ان کے متعلق خصوصی حکم دیا گیا تھا, کہا یہ گیا تھا کہ ان کو واپس نہ بھیجنا, وہ تو ان کی بوٹی ٹکا بوٹی اڑا گئے. یہ واپس کس طرح جائیں گی جو سب کچھ چھوڑ کے اپنے ہاتھ سے یہاں آئی ہیں ایمان کی خاطر, اسلام کی خاطر. تو یہ ان کی پروویژن تھی ان لوگوں جس کے لیے یہ خصوصی احکام دیے گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مومنوں کو بھی. یہ جو حکم ہے نا کہ ایک سے زیادہ شادی کر لو, وہ صرف اس واقعہ کے متعلق تھا, ان اس قسم کے حالات کے متعلق تھا کہ اب یہ جو آ گئی ہیں جوان عورتیں ہیں, بیوہ ہیں, کوئی نہیں ان کا تنا, یتامہ کہاں ہے ان کو, عورتوں کو اور ان لڑکیوں کو, ان کو پناہ دینی ہے, کہاں پناہ دی جائے. بہت بڑی حکمت تھی یہ, جوان لڑکی جوان عورت گھر کے اندر اس کو لا کے یوں رکھا جائے. ایک تو پناہ کی بھی ضمانت نہیں ہوتی ہے نا انسانیت کا تقاضا, ایک وہ بھی اس طرح رہنے میں اپنا شرف اور عزت محسوس نہیں کر سکتے کہ میں کس حیثیت سے ہوں اس گھر میں. کہا کہ شرف و عزت کے اعتبار سے گھر میں اپنی بیویوں کی رضا مندی سے, ان سے کہو کہ تمہاری ایک بہن محتاج ہو گئی ہے اس وقت سہارے گی. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں اس مذہب شدہ تاریخ میں بھی یہ واقعات ملتے ہیں کہ ان حالات کے اندر اگر کوئی دوسری بیوی آتی تھی جو قرآن نے اجازت دی ہے تو یہ اس کو باہر استقبال کے لیے آیا کرتی تھی گھر کی بیوی. آؤ بہن کوئی بات نہیں ہے, مل کے گزارا کریں گے, تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے تو ہم تمہارے سہارے, فکر نہ کرو. یہ تھی وہ بات. ہاں قد علمنا, وقت ہو گیا, قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ.